राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सर द्वारा पर हुआ। राम
क्या बात रही है?
नहीं, ठीक बात सुन रहे हैं। कर्तृत्व नहीं है जब वो करता ही नहीं है, तो फिर उसके लिए कार्य भी क्या है और उसके लिए करण की भी क्या हो सकता है? पर महाराज जी, ये किस स्थिति की बात है ये बात पूछनी
है। ये बात है परमात्म तत्व की जो प्राप्ति की इच्छा होती है ना, तब से ही ये बात समझनी चाहिए कि परमाणु तत्व में कर्तृत्व तो नहीं है और कर्ण की अपेक्षा नहीं है। ये पहले ही बात मान लेनी उचित है, तो उद्देश्य कर्म निरपेक्ष हो जाएगा। कर्ण की सहायता लेते हुए भी साधन करते हैं तो उसके ध्यान में ये बात आ जाएगी कि वास्तव में कर्ण निरपेक्ष तत्व है और कर्ण निरपेक्ष तत्व का साधन भी कर्ण निरपेक्ष ही है। जब तक असाधन साथ में रहते हैं, तब कर्म सापेक्षा अधिक सी है। परमात्म तत्व में कर्म की अपेक्षा नहीं है, परंतु असाधन है साधन दोनों विचारक द्वंद्व रहता है। जब तक निर्द्वंद ही महाबाहो सुगम बंधा प्रमुचते, तो निर्द्वंद होता है ना, तब फिर कर्म नहीं रहता। जब तक सत असत का द्वंद रहता है, साधन असाधन का द्वंद रहता है, तब तक कर्म रहता है। तो वास्तव में असाधन में इरा करना मन उद्देश्य, जिस निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो सर्वथा निष्काम भाव तत्व के होने से होता है। इस वास्ते तिलक महाराज ने कर्म योग जो होता है सिद्ध पुरुष के द्वारा ही होता है, ये मना होना। कर्म योग नहीं होता, ये वास्तव में सर्वथा निष्काम होना विद्यते रेखि सिद्धंते सर्व संशया क्षीयंते शास्त्र कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सिद्ध ग्रंथि बिल्कुल नहीं रहती है, जड़ का नाश हो जाता है, जड़ का संबंध विच्छेद हो जाता है, नाश हो जाता है और संशय सब मिट जाते हैं, किंचित मात्र भी संशय नहीं रहता और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं उसी परमात्मा को प्राप्त होने पर। तो प्राप्त होने पर सर्वथा निष्काम हो जाता, कामना उसमें नहीं रहती, परंतु सर्वथा जब तक प्राप्ति नहीं होती, पूर्णता नहीं होती है, तब तक निष्काम भाव का उद्देश्य रहता है। निष्काम भाव नहीं रहता पूरा, परंतु स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते मातु भयात्। वो कर्म का स्वल्प भी बात है अनुष्ठान, वो महान भय से रक्षा करता है। तो इसमें तीन बात आ गई, नेहाभिक्रमासूची प्रतिवायु निविद्यते और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते मातु भयात, तीन बात आई है इसमें। एक पहली बात ये आई कि ऐसा स्थान के बुद्धि योगी तुम्हान सुनो बुद्धिया युग तो यह बात है कर्म बंधन प्रहार से सी, तो कर्म बंधन का सर्वथा नाश हो जाती है, बात ये आई। तो चार बातें आई इसमें, तो चार बातों में ये स्वल्प में इसका थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। इसका जब तक तो साधक लिखाने लगे तब ये बात समझ में आई थी, पहले बात समझ में ठीक आती नहीं थी कि थोड़ा भी अनुष्ठान रक्षा कर देगा तो फिर अनुष्ठान की अगर जो क्या रही पूरा हो जाएगा। फिर ये समझ में बात आई कि निष्काम भाव जितना हो गया है ना जैसे जैसा, तो निष्काम भाव से जो अनुष्ठान किया जाए उसका फल परमात्मा की प्राप्ति ही होगा, दूसरा नहीं होगा। जैसे सकाम भाव से कर्म किए जाए शुभ, तो तो शुभ कर्मों में तो प्रवृत्ति हो जाती है, परंतु ये मुक्ति दायक नहीं होते, मोक्ष आदि दायक होते हैं। ये स्वर्ग आदि और अगर धनी बन जाए, स्वर्ग बन जाए, परलोक में विशेष ऐसी अवस्था हो जाए, इसके कारण बनते हैं। पर निष्काम भाव सर्वत्र जितने अंश में हो गया है, उसका फल तो केवल परमात्मा की प्राप्ति ही होगा, उसका सांसारिक प्राप्ति से उसकी संबंध की बात नहीं रही, वो बदल में नहीं रहता। उसका तो स्वल्प महत्व भयात महान भय से रक्षा करने में ही उसका थोड़ा सा स्वाद उठा उसमें ही है। इसी तरह से कर्म निरपेक्ष होता है, तो कर्म निरपेक्ष सर्वथा होने पर ठीक कर्म निरपेक्ष तत्व है, परंतु पहले कर्म निरपेक्ष बात ऐसी रहती है कि ये किया जाए कर्म है, ये सब के सब वास्तव में जो क्रिया है ये प्रकृति से अतीत है नहीं, कृति कर्म क्रिया करते हुए प्रकृति के राज्य में रहती है, तो प्रकृति से सर्वथा अतीत होने का उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य में कर्म सापेक्षता नहीं रहती पहले भी। इस विषय को ठीक समझ रहे तो साधन उसका बढ़िया होगा, नहीं तो वो गिरता रहेगा, कभी सकाम और कभी निष्काम, कभी परमात्मा उद्देश्य, कभी धन का उद्देश्य, कभी मान का उद्देश्य, कभी बढ़ाई का उद्देश्य, ये साथ में पड़े बनते रहेंगे। परंतु परमात्मा प्राप्ति ही करना है, ऐसा होने पर उद्देश्य में संसारिक नहीं रहेगा, उद्देश्य सांसारिक नहीं रहेगा उसका। उद्देश्य संसारिक न रहने से ही वो साधक होता है, और जब तक उद्देश्य सांसारिक रहता है साथ में, तब तक वो साधक नहीं है। पारमार्थिक साधना होने पर भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसमें कोई साधन न हो, साधन का आंशिक न होता, आंशिक साधन न होता है ही नहीं, कोई भी सब में रहता है, क्योंकि परमात्मा का अंश है साक्षात्कार, साक्षात स्वयं ही, उसका अंश होने से वो सर्वथा साधन रहित कैसे हो सकता है। देवी संपत्ति सर्वथा देवी संपत्ति हो जाए ये नहीं, आज संपत्ति रह सकती है, मतलब आज संपत्ति का उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य नहीं रहेगा
जी।
तो उद्देश्य में करने निरपेक्षता होगी, तो उसकी धारणा में करने निरपेक्ष ही होगा, करने निरपेक्ष धारणा चाहिए पहले से ही, साधन असली करे उसकी असाधना से बचना चाहिए। आज साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उन्नति नहीं होती है, कारण क्या है, साथ में असाधन रहते हैं, मन झूठ कपट भी कर ले, बेईमानी भी कर ले, ठगी भी कर ले, धोखाबाजी भी कर ले धन के लिए, और मन में लगे हम साथ बाबा जी थोड़े साधक, हम तो ग्रस्त है, तो हमारे तो करना पड़ता है, करना जरूरी है। अब ये जो जरूरत रहती है तब तक वो साधक नहीं होता, संसारी आदमी है, कम ज्यादा रहता, किसी के भाव पारमार्थिक क्रियाओं की मुख्यता रहती है, किसी के ही व्यवहारिक की मुख्यता रहती है, किसी के निषिद्ध की मुख्यता रहती है।
उनकी एक बात रहती है महाराज जी, संसार में रहते हैं, संसार का व्यवहार करते हैं, तो संसार के अनुकूल कर देवे, झूठ भी बोलना पड़े, कोई बात नहीं, और इधर हम भगवान का नाम लेते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से नाम लेते ही है, तो हमारी गलती क्या है,
साधक नहीं हुए हो, वो पारमार्थिक साधक नहीं है।
हम जगत के व्यवहार के लिए बोलते हैं, हमारे लिए तो नहीं बोला, हमारे लिए
जगत का व्यवहार किस लिए है, हमारे लिए किसके लिए व्यवहार,
जगत का व्यवहार, जगत का काम का सड़ जाए, व्यापार
जो काम सड़ जाए तो किसके लिए, हमारे लिए नहीं तो किसके लिए, हमारे लिए है। तो ये हमारे लिए जब तक झूठ कपट भी होता है और भी शुभ व्यवहार होता है, करना पड़ता है, महाराज व्यवहार में बैठे हैं, हम गृहस्थ हैं, हमको साधु थोड़ी है, ऐसा विचार है ना, वो साधक नहीं है, और ये साधक वो भक्ति नहीं है। हम मान लेते हैं सत्संग करते हैं, अच्छी बात, फायदे की बात है, पर साधक नहीं है। साधु तो वो साधन ही जिसका उद्देश्य है, असाधन से जिसकी घृणा है, तो असाधन में विचार नहीं है, असाधन करता नहीं है, होता हो जाए कोई चलता, उसी चिंता होती है, दुख होता है, कहीं झूठ कपट भी कर रहे है तो दुख होगा, जलन होगी, वो एक दो चार बार होगा, फिर वो नहीं होगा, रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, जिसका उद्देश्य पारमार्थिक है, वो विधि रूप से कैसे कर देगा, झूठ को करना ही पड़ता है, करना रहता है, करना तो होता ही है, हम गृहस्थ है तो गृहस्थ की ही मुख्यता रहेगी, साधन करते ही गृहस्थ की मुख्यता और व्यवहार करते ही साधन की मुख्यता और संसार की मुख्यता, मुख्यता संसार की रहेगी उसकी हर समय। मानो साधक पुरुष होता है साधारण, वैसे ही संसारी काम भी वैसे ही करता है और साधन भी संसारिक रहते हुए करता है, संसार की रहती है। साधन करने में तत्पर हो जाने पर मुख्यतः साधक की रहती है। तो असाधन आदमी, असाधक आदमी काम करता है वो वैसे ही व्यवहार का काम करेगा, और परमार्थ का काम करेगा तो भी व्यवहारिक आदमी से संसारी, वो संसारी आदमी होकर के ही साधन करेगा। उसी साधन पर जो व्यवहारिक बना है और सांसारिक बना है वो अखंड रहेगा। और साधक का उद्देश्य में साधक बना अखंड रहेगा। मैं साधक हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, भग रहेगा। तो संसारी करना ही पड़ता है, तब तो साधक नहीं है वो, सत्संग शुभ काम है, सत्संग शुभ काम है, शुभ संग है, मन में सत्संग नहीं है, सत्चर्चा है, सत्कर्म है और सत्चिंतन है। ये सत्चर्चा है, सत्कर्म है, सत्चिंतन है और क्या है, सत्संग नहीं है। सत्संग होने पर असत का संग रहना नहीं चाहिए, असत का संग उसकी जानकारी में, ज्ञान के ऊपर उद्देश्य में नहीं रहता है, नहीं असत का संग तब वो साधक होता है। ऐसे उस साधक बना जितना आ जाएगा उतना कर्म निरपेक्ष ही होगा वो। तीसरे विचार करो इसमें, कर्म सापेक्ष तो कर्तित्व रहेगा ही, कर्तित्व भोक्तित्व रहेगा ही, कर्तित्व भोक्तित्व संसार है, संसार कर्तित्व भोक्तित्व ही है। वैसे ये भाई शरीर स्थोप मानते है, न करोते न लिप्यते, शरीर स्थिति होता हुआ भी कर्तित्व और लिप्तपना उसमें नहीं रहता, कर्तित्व और भोक्तित्व ये मुख्यतः से बात रहती है। साधक बना तभी सिद्ध होगा, नहीं तो अवार क्या बात है। हर एक आदमी के भीतर में साधक है, हम साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन ध्यान सब करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठीक करते हैं, साधन कर रहे हैं हम तो, साधन कर रहे हैं तो असाधन होता है, साधन भी होता है, गृहस्थ है तो गृहस्थ साधु थोड़ी मतलब है, साधक साधक होता है, गृहस्थ साधु नहीं होता है, न गृहस्थ होता साधु नहीं, साधु होता है, बात ऐसी हो जाती है। कहते हैं कि परमात्मा प्राप्त साधु को नहीं होती, परमात्मा प्राप्त गृहस्थ को भी नहीं होती। सरना जी क्या है, परमात्मा प्राप्ति गृहस्थ को नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति साधु को भी नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति साधु को होती है। साधु होता है, गृहस्थ होता है, साधु होता है, साधु पर साधु बने का अभिमान है, गृहस्थ बने का अभिमान है, तो उसे साधक कहा है। इस पर सोचो, विचार करो, इस पर शुभ कर्म है सत्संगी, शुभ कर्म है सत्कर्म है, सत्चर्चा है, साधन भी एक शुभ कर्म है, शुभ कर्म से लाभ है। पर पारमार्थिक साधन कहाँ है, वो अपनी मुक्ति चाहता वो कहाँ है। जैसे धन चाहने वाला एक होता है, एक बेपरवाह से धन कमाता है, कभी धन लग जाएगा, नुकसान भी हो जाए, कभी भूल से खर्च कर दे, जान करके भी कभी खर्च कर दे, ब्याह साल में खर्च कर दे, करना ही पड़ता है, करना ही है, ऐसे खर्च कर दे तो लोभी असली नहीं है। असली लोभी होगा तो थोड़ा चलना है, यहाँ पर चार पैसे लगते हैं, चार पैसे क्यों लगा, चलकर चले जाएंगे। जैसे ज्यादा लोभी होता है तो वो कठिन का भोग लेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा, थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो जाए तो ऐसे साधन का लोभ भी होगा। साधन का वो असाधन कैसे करेगा, जान कर पैसा नष्ट हो जाए ऐसा काम कैसे करेगा लोभी, हो जाए तो कोई फर्क कौन नहीं भाई। बात तो ये बात अब चर्चा करते हो ना, आप पूछते हो तो ये बातें पैदा होती है। तो जब बीतती जाती है, जब विचार करते हैं ना, तो कर्म सापेक्ष साधक होता ही नहीं, साधक मात्र कर्म निरपेक्ष होता है। कर्तव्य तो जब तक ज्यादा रहता था तो वो ज्ञान का साधन कैसे होगा। ये चर्चा जो करते होते हैं हमारे तो और तेज चलती है, विषय स्पष्ट होता है। विषय जब कर्म सापेक्ष हो तो मन बुद्धि की आवश्यकता समझते है ना। प्राय साधक जितने गए वो मन बुद्धि की आवश्यकता समझे, बुद्धि के द्वारा ही साधन करते हैं। और बुद्धि के द्वारा करेंगे बुद्धि की आवश्यकता समझेंगे, आवश्यकता जड़ की समझेंगे तो जड़ का त्याग कैसे करेंगे। मन में ऐसी है कि मन बुद्धि तो लगाना ही पड़ेगा, मन बुद्धि बिना काम चलेगा ही नहीं। तो कर्म निर्पेक्ष क्या समझ में आ रहा, कर्म निर्पेक्ष समझ में आता ही नहीं। समय कैसे आ रहा, आवश्यक तो समझते है नहीं, तो सहारा है।
जैसे धन का सहारा लेते हैं, मान का सहारा,
हाँ, तो इसमें कर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। कर्म निर्पेक्ष कैसे होगा, कर्म निर्पेक्ष होगा ही नहीं। कर्म निर्पेक्ष कैसे होगा, मन ही लगाएगा नहीं, बुद्धि लगाएगा नहीं, कान नहीं लगाएगा, जबात नहीं लगाएगा, पुस्तकों को नहीं देखेगा, तो कैसे होगा। इसलिएगा ही उनको साधक में साधन में सहायक मानता है। अब उसे समझ विकसित कैसे होगा, ये तो तब होगा कि जब प्रकृति का संबंध वो बाधक है, किसी से हो किसी तुम्हारे भी बाधक ही है, वो तब ये करने पर बात समझ में आएगी। समझ नहीं आएगी, साधन किया जाएगा तो कर्म से किया जाएगा, बिना कर्म कैसे करेंगे। जैसे ही पक्की बोली बरबर करने पर तब होगा जब सिद्ध हो जाएगा, जैसे भी निष्काम तो तब होगा जब सिद्ध हो जाएगा, तब तो साक्षात्कार हो जाएगा, तब निष्काम होगा, पहले निष्काम कैसे होगा, होगा ही नहीं। यार विचार में ये बात बैठी हुई रहती है। सांसारिक काम जितने होते हैं सबके सब करते तो है और कर्म के साथ रहते ही होते, इसलिए भी साधन परमात्मा प्राप्ति का है। तो सूजन की सहायता लेनी ही पड़ती है, कर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है, ये होगी अंतःकरण की सहायता के बिना साधन कैसे होगा।
तो मूल में भूल है, वो कर्तृत्व वाली बात है,
हाँ। तो वो समझ में नहीं आती कि साधन करे है कर्ण नहीं हो कैसे होगा। अगर कर्ण को आवश्यक समझेगा तो कर्म संबंध निश्चित कैसे होगा, जड़ का संबंध विच्छेद उसका अकल में नहीं आते। ये संबंध विच्छेद होने से तो काम होता ही नहीं, होगा ही इनसे। इसमें तो कोई बात तो पैदा हो, बोलो।
कर्तृत्व से ही कर्णों का आग्रह है,
कर्तृत्व ही होता है, क्रिया जनकत्व कारकत्व होता है। संबंध परंपरा से होने पर भी सृष्टि कारक नहीं होता, कारक नहीं होता वो, क्योंकि क्रिया जनक बना नहीं होता उसमें। अरे क्रिया जनक होता है तो क्रिया जन्य होता है, वो तो कर्म होता है, शुभ शुभ कर्म ही होगा, अकर्म में कैसे जाएगा, कर्म अकर्म कैसे हो जाएगा, कर्म होंगे शुभ कर्म होंगे। आपका कोई विचार आता हो तो बोलो भाई। पैसे का लोभी होता है वो पैसे का त्याग कैसे कर सकता है, पैसा त्याग कर नहीं सकता। उनसे जुटी हुई पैसे मेरे काम चलता ही नहीं, पैसे मेरी काम कैसे चलेगा, कैसे वो पैसा नहीं लेते, नहीं लेता तो उनको कपड़े की जरूरत होती है कि नहीं, सवारी की जरूरत होती है कि नहीं, पुस्तक की जरूरत होती है कि नहीं, होती है तो पैसे भी तो कैसे होगा, भोजन भी कैसे मिलेगा, उसको कपड़ा भी कैसे मिलेगा, सवारी कैसे मिलेगी, पुस्तक भी कैसे मिलेगी बिना पैसे,
कोई
कुछ करता ही है पैसे का अवसर दूसरा कर देगा, आवश्यकता रहती है पैसे की, बहुत पैसे पर काम कैसे चलेगा, यही बात है, कर्म पर काम कैसे चलेगा, कैसे होगा। तो असली विरक्त होगा त्यागी तो वो कहते कैसे मिलेगा, तो कहते काम चलेगा नहीं तो रोटी बिना मर जाएगा, कहते रोटी बिना मर जाएगा तो रोटी खाते खाते नहीं मरेगा क्या, क्या फायदा हुआ, रोटी खाते खाते मरते हैं लोग, रोटी खाते अगर नहीं मरे तब तो बात ठीक है, मरता तो पड़ेगा, मरता तो अनिवार्य है, रोटी खाओ तो भी मरोगे, नहीं खाओ तो मरोगे, भूखा मर के मर जाओगे, मरना तो पड़ेगा ही, कहते भूखा मर के मर जाओगे, पैसे भी काम कैसे होगा, तो छोटे बच्चे होते हैं वे काम करते हैं उनके पैसों की आवश्यकता होती है क्या, बिना उद्योग भी भोजन मिलता है कि नहीं बचपन में, और बिना पैसों के सारे भी चीज मिलती है कि निर्वाह होता है नहीं होता है। जिसका प्रबंध बच्चों को पालन करने का है वही तो प्रबंध गड़ी है, दूसरा थोड़ी है, अपना अपना अभिमान करके फंसा है वो। विचार करो,
जिसके पास पैसा नहीं है और उसका काम चलता है,
चलता है
तो दूसरे लोग अंदाज लगाते हैं, भी दूसरे लोग कर देते हैं, ऐसे ही कर्म सापेक्षता वाले भी उनका कर्णों में आग्रह है, ऐसी बात सुनी है तब ऐसा किया है, ऐसी बात पढ़ी है तब ये बात आई है, कुछ को साधन भजन किया है तब ये बात है, उनका भी उसी प्रकार से कर्णों में आग्रह रहता है,
ये बात कर्म में कैसे होगा, हो गई नहीं, पैसा नहीं लगते नहीं लगता, पैसों बिना काम तो नहीं चलता था।
महाराज शास्त्रों में ये भी तो बात आती है कि जो रथ है वो महल तक चला जाएगा,
हाँ।
परंतु उसमें सार वो रथी है,
हाँ।
वो उसको अंदर अपने महल में खुद भी जाना पड़ता,
खुद भी जाना पड़ता,
रथ नहीं जाता,
वहाँ नहीं जाता, सारथी भी,
सारथी भी नहीं जाता,
सारथी भी नहीं जाता,
वहाँ अपने खुद का जो अपना महल है उसमें अकेला ही जाता है,
यही बात, यही बात।
महाराज जी इतनी बात आते फिर ये कर्ण सापेक्षता की आग्रह की बात,
वो कर्म निरपेक्ष वहां से समझ में बात आई नहीं, विस्तार सी है तो रथ कहाँ तक रहता है, रथ से गाड़ी घोड़े जाते हैं, घोड़े से आते जगह लगाम जाती है, लगाम से आगे सारथी जाता है, सारथी जाके रथ जाता है, क्रम है ही कठो नहीं सकता,
जिसका मतलब शास्त्र में कर्म निरपेक्ष की बात बहुत साफ आई है, अपने शास्त्रों में कर्म निरपेक्ष की बात बिल्कुल साफ है,
बिल्कुल साफ है, हमारे जितनी कर्म निरपेक्ष बिना साधन होता ही नहीं, ऐसे ही निष्काम से कल्याण कैसे होगा, तो सुकाम का कल्याण होगा ही नहीं, निष्काम से ही होगा, निष्काम होना ही पड़ेगा, कर्म का खंडन किया है, कर्म से पूर्ति कैसे हो जाएगी, कर्मयोग से मुक्ति मानते हो या खनन करते हो?
अंत में कर्ण निरपेक्ष होना पड़ेगा, नहीं तो उसको तो प्राप्ति तो नहीं होगी।
तो पहले से ये उद्देश्य हो कर्ण निरपेक्ष है तो पहले से जड़ का सारा छूट जाएगा। जैसे जीना है तो वो अन्न के अधीन तो ही जीना, पर अन्न के अधीन ही मान रखा है तो जी नहीं सकते। ये तो कारण आज पाप होने में कारण क्या है? जीना है मेरे को, परिवार में रहना है, परिवार का पालन करना है, बिना झूठ कपट बेईमानी के पैसा पैसा होता ही नहीं। ये जैसे बची हुई है तो ये तो पाप छूटते नहीं है, बात है असत बिल्कुल बुरी बात है। सुन सकते नहीं पैसों की अशुद्धि का, पैसों का अवश्यता समझते हैं, और वो झूठ को बिना आता नहीं। मैंने ये बात कही है कि भाई तुम, मैं छूट नहीं देता हूँ, एक बात कहता हूँ, कम से कम कम से कम कम से कम तुम्हारे भोजन है वस्त्र है शरीर निर्वाह के लिए झूठ को बिना पैसा मत खर्च करो। तो कोई कोई प्रोसेसर करते हरे की समझ नहीं आती ये बात, कम से कम इतना तो करो, विचार तो करने पर आप पूछोगे ना तो हमारे बड़ा फायदा होगा, हमारे को बड़ा लाभ होगा। बस बस नारायण 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 नारायण।